नमस्कार लर्नर्स, आज जो हम बात करेंगे लेसन 11 अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, इसमें हमने काफी सारी बात जो चर्चा की है वो हमने लास्ट टाइम बताया आपको कि कैसे हम बुक्स को अरेंज करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स ज्यादातर अगर देखेंगे आप, बहुत सारे छोटी लाइब्रेरीज में भी होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स बहुत कम होते हैं। और मोस्टली जो देखा गया, ज्यादातर पीरियोडिकल सेक्शन जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मेंटेन करते हैं वो बहुत बड़ी लाइब्रेरीज करती हैं, ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। उनका एक सेक्शन ही अलग होता, फ्लोर अलग होता है पीरियोडिकल सेक्शन का, जिसमें कि आप डीपर हायर स्टडीज के लिए जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मोर देन बुक्स एंड द रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच इज पब्लिश्ड इन दीज प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले किताब तक आते आते इन्फॉर्मेशन काफी ऑब्सोलीट हो जाती, पुरानी हो जाती है, साल लग जाता है किताब को आते आते, दो साल लग जाते हैं कभी कभी। दैट वे यू कैन सी द रिसेंट एंड द करंट इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, या किसी टॉपिक पे जैसे जो काम चल रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या जानना चाहते हैं, वो सब आपको पीरियोडिकल्स ही बताते हैं। ये प्राइमरी टॉपिक, इसी की हम बात करेंगे कि इन्हें लाइब्रेरी में जो काम है इनका, इसकी इन्फॉर्मेशन तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, और इनसे जो काम रिलेटेड लाइब्रेरी में है वो बुक से भी ज्यादा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादा हो जाता है और अलग हो जाता है किताबों से। क्योंकि किताबों को हमने एक बार खरीदा और फिर हमने उन्हें लगा दिया, मेंटेनेंस करके फाइनल स्टेप तक लेके आगे जो भी प्रोसेसिंग 3-4 स्टेप्स हैं वो सब करके वी लीव देम इन द फाइनल स्टेज, जहां तक ये सर्कुलेशन में आ जाती है, आपके पास इश्यू रिटर्न में आ जाती है। पर जो पीरियोडिकल्स हैं उनका काम बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि ये हर समय आते रहते हैं, कभी आपको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, बाई मंथली, सिक्स मंथली, इनका मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है आपको कंटिन्यूसली। यू हैव बी इन टच कि हमारा कुछ मिस तो नहीं हुआ है बीच में, और जो जर्नल्स आ रहे हैं सीक्वेंस में आ रहे हैं, और जो लग रहे हैं तो वो कैसे लगा रहे हैं हम, उन्हें किस तरह से हम, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। और अगर कोई एक इधर उधर हुआ है कोई इशू, तो उसके रिप्लेसमेंट हम कैसे कर रहे हैं। और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है, जैसे नेचर, इतना महंगा जर्नल है, बहुत ही अच्छा जर्नल है, तो ऐसी जर्नल्स को, या डिस्टेंस एजुकेशन है, रॉटलेज छापता है, तो ऐसे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं जिनको हम साल भर के बाद कहीं इधर उधर नहीं फेंकते। उसके अलावा भी, ये तो मैंने बस एग्जांपल दी दो जर्नल्स की, बहुत सारे जर्नल्स हैं जिन्हें हम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, साल के बाद इनकी बाइंडिंग कराते हैं और इन्हें प्रॉपर एक एक्सेशन नंबर मिलता है, और प्रॉपर बाइंड करके, इन्हें एक्सेशन नंबर करके इनकी भी प्रॉपर फाइलिंग होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीरियोडिकल्स से है काम शुरुआती है, वही है रिसीविंग, स्टैम्पिंग, इनका पीरियोडिकल को पीरियोडिकल रूम तक ले जाना, फिर इनकी ट्रेसिंग, मेंटेनेंस, फिर एंड पे वीडिंग भी है एक पार्ट इसमें। जैसे बहुत पुराने हो गए और अब इनमें कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ऐसा कुछ जर्नल है, तो उसको वीड आउट भी कर लेते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं, चाहे आप उन्हें बेचें या किसी और लाइब्रेरी को दें या आप डिस्ट्रॉय करें, दैट्स ऑल अप टू योर लाइब्रेरी डिसीजन कि क्या करना चाहते हैं। एक्सेस टू द पीरियोडिकल कलेक्शन, हम लोग जो पहले हम मेंटेनेंस में, एक पॉइंट ये भी है कि पीरियोडिकल कलेक्शन तक एक्सेस कैसे मिलता है। पीरियोडिकल डिवीजन इज यूजुअली फॉर यूज ऑफ ओनली इनसाइड पीपल, जो आपके ऑफिस के, स्कूल के, कॉलेज के जो भी लोग हैं उनके लिए ज्यादातर पीरियोडिकल्स होते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट इन ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो फिर वो किसी के लिए भी हो जाएंगे जिन जिनको आप एक्सेस देना चाहते हैं, ना कि everybody can get the access. So access to the periodicals is mainly because to them only. तो इसमें ये depend करता है, अगर कोई ये चाहता है कि आप इसका फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं पीरियोडिकल का, या एक आर्टिकल डाउनलोड करना चाहते हैं, दिस इज ऑल अप टू द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, कैन टेक द डिसीजन कि आप उसको पढ़ने के लिए इंटरनल सर्कुलेशन में आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है फिर इसमें आप देखेंगे है डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसे करते हैं हम अपने इन पीरियोडिकल्स को, ये बुक्स की तरह नहीं है कि हमने इनको शेल्व कर दिया, पीरियोडिकल्स को दिखना भी चाहिए। और जैसे आपने लगाए हैं, जो आपकी लाइब्रेरी में जो भी लोग आएंगे, व्हाट यू विल सी, यू विल सी देन वंस यू आर डिस्प्लेइंग देम ऑन द डिस्प्ले रैक्स, सो दे लुक सो ब्यूटीफुल, अच्छे दिखने से ही लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ इसमें क्या है, कुछ होगा नया क्योंकि कवर पेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं कहीं कहीं सारे पीरियडिकल्स के, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिस्प्ले देम वेरी वेल टू गिव इट अ गुड लुक, लाइब्रेरी का भी एक अच्छा लुक हो और जो उस की वजह से जो है आपका जो पढ़ने वाले लोग हैं ज्यादा हो जाते हैं. सिर्फ डिपेंड करता है आप किस तरह से इन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं और कैसा अरेंजमेंट रखा आपने. एक क्योस तो नहीं है इनका, जैसे अगर आपने अल्फाबेटिकली लगाए हैं तो ए से जेड तक हो जाएंगे, जहां बड़ी लाइब्रेरीज हैं वहां ए से जेड तक नहीं लगा सकते, वहां हम सब्जेक्ट वाइज करते हैं लाइक वी डू विद द बुक्स. इसी तरह से हम लोग पीरियडिकल्स को भी सब्जेक्ट वाइज लगाते हैं. इसमें जो है आपके पास डिस्प्ले करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी फैक्टर है हमारे जर्नल्स को रखने के लिए है वो जहाँ पर आपके पास फ्लोर पे स्पेस अच्छा होना चाहिए. लेआउट लाइब्रेरी को उस तरह बनाना पड़ेगा आपको कि ताकि आप अपने पीरियडिकल्स को एक्सपोज फेस कर सकते हैं तुम टूवर्ड्स रीडर्स, कि जहाँ तुम्हारे रीडर्स आ रहे हैं उन्हें देख सकते हैं, दीवार की तरफ फेस नहीं है उनका, ये बहुत ज़रूरी है. तो इसमें डिस्प्ले रैक्स जहाँ आप सभी लोग लाइब्रेरीज जाते हैं देखा होगा आपको बहुत तरह के डिस्प्ले रैक्स होते हैं. एक फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेप टाइप लिया है, पिजन होल टाइप लिया है, इंक्लाइंट लिया है. जो स्टेप टाइप में क्या है आपका बहुत सारी लाइब्रेरीज में तीनों ही होते हैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में, और छोटी लाइब्रेरीज में जो उन्हें कन्वीनियंट लगता है जिसमें वो ज़्यादा प्रॉपरली डिस्प्ले कर पाते हैं चीज़ें वो लेते हैं. जैसे स्टेप टाइप में क्या है यूजुअली 3 से 4 फुट तक का लंबा होता और 3 या 4 स्टेप्स होते हैं इसमें, तो ऊपर से नीचे, लेकिन इनमें डिविजन नहीं होता बिल्कुल भी, तो स्ट्रेट लंबे लंबे होते हैं. ये आप देखोगे आपकी बुक में भी इसकी पिक भी होगी, आप अपने नेट पे भी डालेंगे ताकि आपको भी पता चल जाएगा स्टेप टाइप कैसा होता है. जब आपको लिखना होगा वंस यू हैव सीन द पिक्चर, लाइब्रेरी का हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली देखना ज़रूरी है. जब तक मैं आपको ये 10 बार भी ये लर्न कराऊंगी कि स्टेप टाइप ऐसा ऐसा होता आप कभी भी याद नहीं रख पाएंगे. इट्स बेटर यू गो ऑन इंटरनेट, इसे खोल के देख लीजिए, स्टेप टाइप वहाँ डाल दीजिए. कभी जब हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं उसमें हम ये पिक्चर्स भी दिखा देते हैं और बुक में भी है आपके, यू कैन सी इट इज जस्ट स्ट्रेट, थोड़ा कोई बॉक्सेस नहीं बने हैं, सीधे सीधे खुले में, जैसे इकट्ठे आप 5 मैगजीन्स को 5 जर्नल्स को इकट्ठे लगा सकते हैं, ऊपर की रो फिर सेकेंड रो थर्ड रो, मतलब 20-25 एक एक साइड में आपके डबल रैक के पीरियडिकल्स, 2 साइड में लगाएंगे तो 50 पीरियडिकल्स की जगह बन जाती है. छोटी लाइब्रेरीज के लिए ये ठीक भी है. फिर है पिजन होल. पिजन होल में क्या है, आपको पिजन होल का मतलब ही हो गया कि छोटे छोटे डब्बे बॉक्सेस की तरह, हर एक पीरियडिकल को एक जगह मिलगी उसमें. उसमें एक लिखने की जगह भी होती है कि यहाँ पर स्ट्रेट होता है, ये एकदम स्ट्रेट बिल्कुल बॉक्स जैसे जगह होती. दिस ऑल्सो यू कैन पुट इन योर गूगल में डाल करके देख लीजिए, और ये भी आपको सीधे सीधे समझ आ जाएगा. इसमें 7.5 to 6 feet तक की इसकी विड्थ होती है, 1.5 तक की इसका लोअर कबर्ड होता है, ऊपर वाले में बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस लगवाने होते हैं. तो ये भी एक है, इसमें ऑलमोस्ट 36 पीरियडिकल्स तक की इसकी कैपेसिटी हो जाती है रखने की. बेटर यू हैव अ लुक. फिर इंक्लाइन टाइप है. इंक्लाइन टाइप मुझे लगता है यूजुअली बहुत ही कन्वीनियंट होता है. इंक्लाइन टाइप में बॉक्सेस होते हैं पर वो थोड़े से हल्के से टेढ़े होते हैं, स्लांट जिसे कहते हैं, हल्का सा टेढ़ा, तो उसके अंदर एक जगह बनी हुई होती है. ऊपर आपने वो जर्नल रखा और नीचे उसका टाइटल लगा दिया और आप उठाएं देखेंगे वो बॉक्स ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जब वो आप देखेंगे अंदर बॉक्स में जगह भी खाली होती है. दैट इज इंक्लाइन टाइप. वो मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि जो आपके पूरे ईयर के जर्नल्स हैं वो एक ही जगह आपके जमा होते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स फुल, पूरा भर गया हो तो आप निकाल लीजिए. अदरवाइज तो आपको 12 इशू 15 इशू 20 इशूज तो आराम से उनके अंदर रह जाते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत भी होगी वहाँ से अंदर ऊपर सबसे ऊपर आपका करंट रहेगा, करंट पीरियडिकल जो है वो रखा और बाकी सब आपने अंदर डाल दिए. ये है इनक्लाइंट. इसके बाद हम ये तो था कि किस तरह से हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हम इनको डिस्प्ले करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिकल्स. अरेंजमेंट कैसे करना चाहिए पीरियोडिकल्स का, अगर बहुत सारी लाइब्रेरीज टाइटल से कर सकती, लैंग्वेज से कर, कंट्री, सब्जेक्ट कोड, मतलब बहुत सारे तरीके हैं आपको अरेंज करने का पीरियोडिकल्स का. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अगर छोटी लाइब्रेरीज है तो इट्स बेटर कि आप अपना टाइटल से अल्फ़ाबेटिकली कर लीजिए. अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट कर लिया आपने और आपके पास 10, 20, 25 हैं तो दैट विल बी गुड कि आप उनको अल्फ़ाबेटिकली करेंगे. अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो फिर आपको सब्जेक्ट वाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी फिर अल्फ़ाबेटिकली. आपने हर सब्जेक्ट को अलग निकाला, ये इंग्लिश से रिलेटेड है, ये फिजिक्स से, ये केमिस्ट्री से. जहाँ देखा जाएगा आप, एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ हर तरह के जर्नल, हर तरह का सब्जेक्ट होता है. और जो सब डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज होती हैं, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में अपनी अपनी डिपार्टमेंट, अगर कोई बॉटनी का डिपार्टमेंट है तो उसमें खाली बॉटनी की किताबें ही होंगी, तो खाली वो सब्जेक्ट अल्फ़ाबेटिकली लगा लेंगे. इसी तरह से अगर सेंट्रल लाइब्रेरी है तो यू विल हैव टू मेंटेन ऑल द जर्नल्स. ये स्कूल लाइब्रेरी से इसलिए ज़्यादा ऐसे नहीं है क्योंकि स्मॉल लाइब्रेरीज में वो स्टेप टाइप डिस्प्ले लगा करके अपना अल्फ़ाबेटिकली लगा लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और बैक इश्यूज़ को अरेंज कर लीजिए अल्फ़ाबेटिकली अलग से, उनको बाइंड करा के पुराने इश्यूज़ को, जो भी हमारे पास वी रियली वॉन्ट टू कीप देम, उनको अलग से पूरे साल का निकाल के अरेंज कर लीजिए प्रॉपरली वन टू ऑल. जो भी उसका वॉल्यूम नंबर होगा उसके हिसाब से उसे इकट्ठा अरेंज कर लिया. और अगर कुछ इश्यू मिसिंग है या नहीं है आपके पास तो यू ट्राई टू गेट अ कॉपी. इन केस यू आर नॉट गेटिंग तो आप कहीं से फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं. और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप वहाँ पर एक गैप लगा देते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक मिसिंग है, अगर कहीं से नहीं अरेंज हो पा रहा. वैसे यूजुअली वी ट्राई टू टेक अ फोटोकॉपी और समथिंग लाइक दैट. इस तरह से हम इनको अरेंज करते हैं. इसमें आपका है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अरेंजिंग पीरियोडिकल्स इन अ लाइब्रेरी, तो गिव रीजंस टू योर सपोर्ट. आप खुद जब आप लाइब्रेरी में काम करेंगे या आप किसी लाइब्रेरी में देखेंगे और आपने पढ़ा भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट वे कौन सा है. जैसे कि मैंने बोला अपनी राय, मैंने ये दी, मुझे इंक्लाइंट सबसे बेस्ट लगता है. इंक्लाइंट में आप अंदर बॉक्स में जर्नल्स को रख सकते हैं पूरे साल के, और ऊपर आपका सबसे करंट इशू रहता है. तो मेरे हिसाब से वो था. तो इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, हेयर यू कैन से वॉट एवर यू फील. और क्यों पसंद है उसका एक रीज़न बता देंगे. अब हम अभी तक हम तो हार्ड कॉपीज़ की बात कर रहे थे, और अब जो हम बात करेंगे नॉन प्रिंट मटेरियल की. नॉन प्रिंट मटेरियल मतलब जो सीडी की फॉर्म में है, डीवीडी की फॉर्म में है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ऑडियो वीडियो टेप्स हैं, ये सब भी हमारे पास लाइब्रेरी में होते हैं. इन्हें हम कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे जो आपको फ़ायदा नज़र आएगा इनको रखने का लाइब्रेरी में, वो है इकोनॉमी ऑफ स्पेस. आपको पोर्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस का तो इशू कम हो ही जाता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. जैसे कि अब हमारे पास अगर 50 सब्जेक्ट हैं आपके सीनियर सेकेंडरी के, ये हमारे 10 डीवीडीज में भी आ जाते हैं. और अगर हम इनकी बुक्स रखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी शेल्फ चाहिए होती है खाली एक एक कॉपी रखने के लिए. तो दैट वे इट गिव्स अस इकोनॉमी इन स्पेस एंड पोर्टेबिलिटी तो है ही. आपने कहीं भी गए, आपको आपने अपनी सीडी से देख लिया, खोल लिया, उसे पढ़ लिया, डाउनलोड करना डाउनलोड कर लिया, प्रिंट करना प्रिंट कर लिया. तो हाँ, इसमें और बुक में ये भी फ़र्क हो जाता है. जो अगर कभी कभी आपको मोनोटोनस लग रहा है टॉपिक पढ़ने में, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा सा तरीका बदल जाता है. जब आप वीडियो बनाते हैं उसी सेम चीज़ का, या ऑडियो कर देते हैं. अब ये किताब में सब कुछ लिखा है, बट इफ़ आई एम रीडिंग दिस टू यू, मैं अगर पढ़ के बता रही हूँ आपको और इसमें से कुछ कुछ तरीके भी बताती हूँ मैं इसे क्या याद रखना है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस. ये आपके पास एक ऑडियो की तरह जा रहा है. लाइक दैट ओनली. वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारा टेक्स्ट जो है कंडेंस भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, शॉर्ट में चला जाता है और स्पीड भी बढ़ जाती है. ये सब चीज़ें हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखने के फ़ायदे हैं. और हमें इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? डेफिनेटली एक कंप्यूटर ज़रूर चाहिए होता है, उससे रिलेटेड फर्नीचर भी चाहिए होगा, प्रॉपर टेबल चेयर चाहिए होगी, और प्रोजेक्टर अगर है तो आपको फिल्म प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, ये सब चाहिए होते हैं. ऑडियो वीडियोज़ के लिए आपको सीडी प्लेयर्स, डिजिटल रिकॉर्डर्स, डिस्प्ले, ये सब पुरानी भी बातें हो गई हैं, पर कुछ कुछ उसमें से सेम भी चल रहा है. टेप रिकॉर्डर्स वगैरह ख़त्म हो गए, हेडफोन स्पीकर्स अभी भी हैं, कैमराज भी हो सकते हैं. और मिसलिनियस इक्विपमेंट्स में आप कहेंगे स्क्रीन्स, कॉर्ड्स, अडाप्टर्स, माइक्रोफोन्स, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए. और इसके अलावा अगर आप इन सीडीज़ और वीडियोस को अगर आप कैसे रखेंगे, इन्हें उनके रखने का एक अरेंजमेंट भी अलग रहता है. उनको हमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं वुडन बॉक्सेस मिले हमें, जिसमें हम अपने सीडीज़ वीडियोस को, ताकि वो करप्ट ना हो जाए. अगर हम लोहे के उसमें रखते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है गिर जाते हैं, लाइन पड़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं लोहे में ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है, तो बेटर होता है. इसके बॉक्सेस प्लास्टिक के भी होते हैं, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं, स्क्रैचेस का कम डर भी रहता है. फिर हैंडलिंग एंड रिपेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आएंगे हम इसके बाद. इस मेंटेनेंस में जो पॉइंट है आप जिस पे हम बात करेंगे, दैट इम्पोर्टेंस जो है प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की क्यों है. फिजिकल केयर एंड रिपेयर ऑफ रिसोर्सेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन. आप देखेंगे अगर आपके पास मेंटेनेंस सेक्शन है आपकी लाइब्रेरी का, मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका. खाली उसमें ये नहीं देखना है आपको कि किताबें साफ़ हो रही हैं, ठीक से रखी जाती हैं, उनका हर चीज़ उनको कूल, क्लीन, स्टेबल टेम्परेचर, नॉन ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखना, ताकि किताबों की जो लाइफ है वो बढ़ जाए. उनकी हैंडलिंग किस तरह से हो रही है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, और उन्हें फ्रीक्वेंटली साफ़ भी करना है, चाहे वैक्यूम क्लीनर से करें या किसी सॉफ्ट मलमल के कपड़े से करें, ताकि हम उन्हें डस्ट, मॉइस्चर, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. इंसेक्ट्स का उन पे हमेशा हमला होता रहता है, फंगे आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों को ख़राब करती है. सो मेंटेनेंस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है आपको केयर एंड हैंडलिंग में और रिपेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में. दे डॉक्यूमेंट्स गेट डैमेज्ड वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द डैम्पनेस हीट. अगर कभी आप देखेंगे हल्का सा आपके बारिश का मौसम है या ओवरहीट हो रही है, तो आप देखोगे कागज़ ब्रिटल हो जाता है, या कहीं से पानी है या कुछ है, तो उसमें इंसेक्ट्स का भी डर रहता है. तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर. बाकी जो है कॉमन इंसेक्ट्स में जो किताबों को ख़राब करती है, वो सिल्वर फिश है, बुक लाइस है, टर्माइट्स हैं. मुझे लगता है फ्यूमिगेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. नाउ रिसेंटली वी हैव बीन फ्यूमिगेटिंग लाइब्रेरी ड्यू टू कोविड, बट वी हैव सीन उससे और भी फ़ायदे हो रहे हैं हमें. हमारी वुड जहाँ जहाँ ख़राब हो रही थी, जहाँ जहाँ उसमें इंसेक्ट लग रहा था, वो ख़त्म हो रहा है. दैट थिंग इज़ गॉन बिकॉज ऑफ द फ्यूमिगेशन, सैनिटाइजेशन, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, लार्ज स्केल पे इन्फेक्टिकेशन करना, वही जैसे मैं कहती दवाइयों का छिड़काव करना और उसको तरीके से देखना, साफ सफाई रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में बी अप्रोच्ड फॉर एडवाइस. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उसके लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है वो आपको इसके सुझाव भी देता है. आप बेशक ऑनलाइन उनसे बात कीजिए या वैसे मेल कर लीजिए, तो दे विल सेंड यू, और यू कैन रीड ऑल्सो ऑन नेट. नेफ्थलीन बॉल्स जो है, रिसेंटली आई वाज आल्सो रीडिंग दिस, दैट नेफ्थलीन बॉल्स जो है उनको किसी भी वुडन बॉक्सेस में जिनमें होल्स हो, वो भी आप बुक्स के पीछे रख सकते हैं जहाँ पर गैप्स होते हैं. तो दैट आल्सो, विद दैट यू कैन अवॉइड द मॉइस्चर एंड द इन्फेक्शन ऑफ द बुक्स आल्सो. New books soon after acquisition of the library should be physically prepared for tough handling for the users. Agar aap dekhenge college mein itna zyada tough handling hai har kitab ki, kyunki they don't have textbooks, they will definitely be coming to libraries only, aur unko bahut sari kitabon ki zarurat padti, bar bar ek student laya dusra leke gaya fir, to is tarah ki बुक्स उस समय हम आप उनको क्या करते हैं, उनकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं या उन पर एक प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट, सो दैट बुक इज नॉट डिफेस्ड, बुक किताब की जो टॉप पेज है वो आपको दिखता रहेगा. ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, बहुत ज़्यादा किताबों को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप नहीं करते हैं ताकि इनकी स्पाइन खराब न हो जाए. दे शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली फॉर प्रोलॉन्ग देयर लाइफ फॉर डिटीरिएशन एंड डैमेज. बुक्स शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द शेल्स, एक दूसरे के ऊपर रखना जैसे मैं कह रही थी वो नहीं. और दूसरा ये भी हो कि किताबों को बहुत टाइट फिक्स मत कीजिए शेल्स में, यू शुड लीव एयर गैप, थोड़ा थोड़ा जगह होने, अगर हमने बहुत टाइट रखा एक किताब को पुल किया तो चार बाहर आ जाएंगे, उससे उनकी स्पाइन खराब हो जाती है. दैट्स वन ऑफ द रीजन्स ऑल्सो कि किताबों को थोड़ा थोड़ा गैप दे करके ताकि सफाई का भी चांस मिले, उनको एयर भी रहे, फ्रेश एयर सर्कुलेट होती रहे. एंड मोर सो जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ओकेजनली दे शुड गो एंड चेक द बुक्स फिजिकली कि हाँ इस किताब में कोई रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, तो दे कैन रिमूव इट. एंड देर आर पीपल हु डू इट देमसेल्स, थोड़ी बहुत जो गोंद से करना हो या किसी भी चीज़ से करना हो थोड़ा थोड़ा खुद ही कर लेते हैं, टेप लगाते हैं, दे डू इट. फोटोकॉपिंग वन ऑफ द मेजर डैमेज विच इज डन टू बुक्स, क्योंकि लाइब्रेरी में से मोस्टली लोग फोटोकॉपिंग के लिए ले जाते हैं, तो फोटोकॉपी किस तरह से करें इसका बहुत अटमोस्ट केयर लेना चाहिए ताकि जो आपकी बुक की स्पाइन है वो खराब ना हो जाए. बुक की स्पाइन जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी बॉडी को मजबूत करती है, हमें खड़ा करने में मदद देती, इसी तरह से बुक की स्पाइन है जो बुक को जोड़े रखती है आपस में, तो अगर वो हम ठीक से केयर नहीं करेंगे तो बुक अलग अलग हो जाती है. तो वी नीड टू टेक केयर वाइल टेकिंग अ फोटो कॉपी ऑफ द बुक, ध्यान से आराम से पूरी तरह से प्रेशर लगा के नहीं खोलना है बुक को, नहीं खुल रही है तो देन यू लीव इट, उसे बेहतर है कि कोई स्कैन करो, फोटो खींचो, और कि ज़्यादा ज़बरदस्ती उसके साथ करेंगे तो उसके वो सारी बाइंडिंग खुल जाती है. बुक केयर एंड रिपेयर, इंडिविजुअल पेजेस विच आर फॉलिंग लूज और रिप एंड टेयर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस, हिंजेस आर रिप्ड ओवर द, ये जो छोटी छोटी केयर हैं जो हम मैं कह रही थी आपको खुद ही कर सकते हैं, जब आपको देखते हो किसी किताब के पेजेस मुड़ रहे हैं तो आप खुद देखिए उसको एकदम पूरा तरह से साफ करके क्लीन करके पेजेस को सही कर लीजिए, कोने से जो खराब हो जाती है किताब उसको ठीक करके रख सकते हैं. डॉग गेयरिंग मत कीजिए बुक को, जैसे पढ़ते पढ़ते कभी इंसान सोचने लग जाता है तो ऊपर के पन्ने को कोने से हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो डॉग गेयरिंग हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि वो पेपर है वो खराब हो जाता है, कर्ल हो जाता है वो खराब हो जाता है. तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वी शुड ऑल टेक केयर, इस तरह तभी हम अपनी लाइब्रेरी को अच्छा देखने में लग कर सकते हैं और जो हमारा कलेक्शन है ये आगे तक जा सकता है. इसमें बहुत सारा रेयर कलेक्शन भी होता है, बहुत अच्छा कलेक्शन भी होता है. वी यूजुअली स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द लाइब्रेरीज, सो मेंटेनेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मच इज यूअर बाइंग ऑफ बुक्स. अगर आपने एक बार खर्च कर लिया पैसा तो उसे किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, किस तरह से रखेंगे, दैट्स योर दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिर हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन की, किस तरह से आप किताबों को प्रिजर्व करते हैं. प्रिजर्वेशन इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग एक्सेस टू आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स थ्रू द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डीके एंड डैमेज. प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है, जैसे आप कोई फूड है उसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, आप उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं तभी वो लंबे समय तक चलता है. इसी तरह से अगर हम कोई आर्टिफैक्ट है हमारे लाइब्रेरी में, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसको हमें लंबे समय तक रखना है और एज एन आर्काइवल या आपका आर्काइव है, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं 25, 30, 50 साल पुराने हैं, उन्हें किस तरह से आप ट्रीटमेंट से, प्रिजर्वेशन से आप उन्हें बचा सकते हैं, उनका जो डीके है, डैमेज है. प्रिजर्वेशन ऑफ सम एनवायरमेंटल कंट्रोल्स आर नेसेसरी, आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर सम रेयर एंड स्पेशल कलेक्शन. की एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पेस्ट्स, जैसे हमने पहले भी बात की कि ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जिसमें ह्यूमिडिटी आती है या पेस्ट्स आते हैं, पोल्यूटेंट्स आते हैं, लाइट का एक्सेस एक्सपोजर हो जाता है डॉक्यूमेंट्स को, वो सब हमें कंट्रोल में कर रखना है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल देना होता है. प्रिजर्वेशन हाउवर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंजर्वेशन विच रेफर्स टू ट्रीटमेंट एंड रिपेयर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, स्लो डीके एंड रिस्टोर देम टू द यूजेबल, सो दैट अगर कोई खराब हो रही है चीज़, उसे हमने जब प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया और उसे प्रॉपरली रखा, तो दिस ऑल कीप्स दम फिट एंड अगेन टू बी यूज फॉर द फ्यूचर. प्रिजर्वेशन शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंजर्वेशन विच रेफर्स टू द ट्रीटमेंट एंड रिपेयर ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स, स्लो डीके और रिस्टोर देम टू द यूजेबल स्टेट. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन. दोनों लग रहा है एक जैसे हैं, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, पर दोनों में हल्का सा अंतर है. इसके बाद हम लाइब्रेरी बाइंडिंग की बात करेंगे कि बाइंडिंग भी बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जो है उनके वहाँ पर अंदर बाइंडिंग का भी एक सेक्शन होता है, जहाँ किताब ख़राब हो गई उन्होंने फटाफट बाइंड करा देते हैं उसमें. पर छोटी लाइब्रेरीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, उसमें हम साल में एक बार या दो बार वी टेक आउट द आइटम्स, जो जिन जिन किताबों को हमें लग रहा है खराबी हो रही है, इनको ज़रूरत है बाइंडिंग कराने की, तो हम उनको अलग से बाइंडिंग करवाते हैं. बेसिकली बाइंडिंग बुक्स के लिए भी है और सीरियल्स के लिए भी है. और अगर देखा जाए जो पेपर बैक किताबें आती हैं उनको, उनकी ड्यूरेबिलिटी कभी कभी कम हो जाती है रीयूज़ करने की वजह से, बार बार यूज़ करने की वजह से, तो उनको कभी कभी बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है. बाइंड करने से उनका क्या है, उनकी लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाती है. लाइब्रेरी कलेक्शन इज एक्सटेंसिवली, देयर इज बाउंड टू बी वेयर एंड टेयर इन द डॉक्यूमेंट्स. बाइंडिंग हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बुक्स एंड इंक्रीज देयर लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रूटीन एक्टिविटी इन द लाइब्रेरी. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट लाइब्रेरी किताबों का अगर आपको उनकी लाइफ बढ़ानी है तो आपको बाइंडिंग जरूरत पड़ती है. डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग. लाइब्रेरी बाइंडिंग जब आप करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है. शुड बी कंजर्वेबल एज पॉसिबल, अल्टरिंग द टेक्स्ट ब्लॉक मिनिमली. कभी कभी ऐसा हो जाता है बाइंडिंग इतनी टाइट हो जाती है और स्पाइन के साथ साथ जो आपका लिखा हुआ होता है वो भी दिखना बंद हो जाता है. वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि इस तरह की बाइंडिंग ना हो जिसमें आपका आधा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है. इट शुड बी नॉन डैमेजिंग टू द टेक्स्ट एज फॉर, जहाँ तक भी पॉसिबल है टेक्स्ट पे कोई डैमेज नहीं आना चाहिए. बाउंड वॉल्स शुड ओपन ईजीली टू 100% पोजिशन. 180 डिग्री जो आप देखते हैं एंगल जो होता है 180 डिग्री का, उस पे आपको, ताकि आपकी जो फोटोकॉपी वगैरह भी किताब को करना हो तो वो खुल के आप आराम से फोटोकॉपी वगैरह भी कर सकते हैं. ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप जब आप बाइंडिंग के लिए बुलाते हैं किसी को, दे देते हैं, आउटसोर्स करते हैं, ये चीज़ें आपको उन्हें बतानी की जरूरत पड़ती. वैसे बाइंडर्स को यूजुअली दे नो ऑल दिस, बट स्टिल वी शुड नो. तो इसमें कितने स्टेप्स हैं बाइंडिंग के हैं, कोलेशन है, सीविंग है, एंड पेपर्स है, कलरिंग एजेस है, हेड बैंड्स है, हॉलो बैक्स है और फिनिशिंग है. ये सब जो स्टेप्स हैं ये बाइंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग, लाइक बुक्स, फिक्शन, पॉपुलर टाइप ऑफ मटेरियल, लेस कॉस्टली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ओनली लाइट बाइंडिंग. जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी बाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट स्ट्रेंथनिंग हिंजेस विथ पेपर और क्लॉथ इज सफिशिएंट. मतलब इन पे लेदर बाइंडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं, पेपर और क्लॉथ से अगर इनके बैक को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो वो भी चलता है. इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं बाइंडिंग में. क्या है, फुल लेदर बाइंडिंग होती है, हाफ लेदर बाइंडिंग होती है, फुल क्लॉथ बाइंडिंग होती है, हाफ क्लॉथ बाइंडिंग, और परफेक्ट बाइंडिंग, प्लास्टिक बाइंडिंग और कवर, जिस तरह की बाइंडिंग आपकी लाइब्रेरी को सूट करती है, इस तरह में से कोई सी भी बाइंडिंग आप अपने लिए चूज कर सकते हैं. पर्पस ऑफ बाइंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी इज टू कंजर्व डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर यूज. मटेरियल्स दैट आर सिलेक्टेड एंड सेंट फॉर बाइंडिंग आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली. बाइंडर शुड बी गिवन द इंस्ट्रक्शन फॉर बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट. बाइंडिंग वर्क ऑल्सो इंक्लूड्स रिसीविंग बैक ऑफ द बाउंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बाइंडर एंड सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स बैक टू द शेल्स. इसमें तो जो तीन चार पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो लाइब्रेरी स्टाफ को देखना है, वो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जा रहा है, उसका रिकॉर्ड बनाइए. पहले तो ये देखिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स को बाइंडिंग की जरूरत है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट जा रहा है. तीसरी बात है, आप इंस्ट्रक्ट करिए अपने बाइंडर को किस बुक में किस तरह की बाइंडिंग की जरूरत है. अगर आपका फिक्शन है तो किस तरह की बाइंडिंग जरूरत है, कोई इंसाइक्लोपीडिया किस तरह की बाइंडिंग है. और जब ये सब होने के बाद जब आपके पास बाइंडेड बुक्स वापस आती हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें और कि जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था वैसा वैसा हुआ है. उसके बाद यही सब बुक्स वापस आकर के काउंटिंग होकर के फिर ये अपनी अपनी जगह शेल्स पे चली जाती है. पर बाइंडिंग से एक चीज ये भी हो जाती है, आपका स्पेस का एक इशू बन जाता है, क्योंकि गत्ता मोटा हो जाता है और जगह ज्यादा ले लेते हैं किताबें. तो ज्यादातर जरूरी, जो मैं पर्सनली समझती हूँ, बाइंडिंग उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की करानी चाहिए जो आपको वाकई प्रिजर्व करने हैं, आगे तक रखने हैं, और कोई आर्काइवल उनमें इनपुट है कि इनको जहां तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है उनको ज्यादातर बाइंडिंग कराने की जरूरत है, या कोई बुक्स हैं जो यूजुअली ज्यादा यूज होते हैं उन्हें. बाइंडिंग ऑफ पीरियोडिकल्स, जैसे अभी तो बुक्स की बात हुई, अब पीरियोडिकल्स भी आपको पता है यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा पीरियोडिकल्स यूज होते हैं. और जहां हम देखते हैं हमारा जो बजट होता है, ज्यादातर बजट पीरियोडिकल्स में जाता है, बुक्स से ज्यादा पीरियोडिकल्स पे पैसा खर्चा जाता है. तो इसमें जो आपके बेस्ट पीरियोडिकल्स होते हैं, जो आप रखना चाहते हैं उनको, इन सबको आपको बाइंड कराने की जरूरत पड़ती है. कई दो तरह टाइप के होते हैं इसमें, कई तो जो होते हैं जो आप लाइफ लॉन्ग परमानेंट वैल्यू होती है आपके पास, यू वांट टू कीप देम फॉर लॉन्गर. कोई कोई जर्नल होता कि 20 साल पुराना जर्नल भी निकाल के हम देखते थे तब क्या काम हुआ था. साइंस से रिलेटेड जर्नल है, जैसे अभी अचानक ही हमारे पास ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कोविड की, तो पहले इस तरह से कब हुआ था, ऐसी महामारी कब हुई थी, फिर तब क्या क्या मेजर्स लिए गए थे, ये सब आपको पीरियोडिकल्स से ये सब चीज़ें पता चल जाती है. अगर आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले का आपको निकालना पड़ेगा तो यू नीड टू बाइंड दोज पीरियोडिकल्स. अब तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास सब कुछ है, पर आज से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं 25-30 साल 50 साल पुराने, दे आर इन फिजिकल. उन्हें भी वैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज ने, मैक्सिमम लाइब्रेरीज ने उनको स्कैन करके उनको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आए हैं. बट स्टिल वी नीड टू, इफ यू वांट टू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ सर्टन पीरियोडिक सर्टन डॉक्यूमेंट्स, तो वी नीड टू बाइंड देम ऑल्सो. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइब्रेरीज पॉलिसी. आपकी लाइब्रेरी क्या चाहती है, किस तरह का आपका सेटअप है, कितना पैसा आपने खर्च करा है अपने पीरियोडिकल्स के ऊपर, और आप कौन से पीरियोडिकल्स को परमानेंटली अपने पास रखना चाहते हैं, ये सब आपका जो है लाइब्रेरी है वही जानती है, उन्हीं को देखना पड़ता है. और टाइम एंड एफर्ट टेकन इन द प्रिपरेशन ऑफ द पीरियोडिकल्स फॉर बाइंडिंग एंड मेकिंग द नेसेसरी रिकॉर्ड्स कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड इफ द परमानेंट बाइंडिंग रिकॉर्ड इज मेड फ्रॉम ईच पीरियोडिकल विच नीड्स टू बी रेगुलरली बाउंड. अगर आपके पास कोई इस तरह के पीरियोडिकल आते हैं, आपको ये पता है ये हर साल इसे बाइंडिंग में जाना ही जाना है, तो आप एक परमानेंट एक लिस्ट भी बना देंगे कि ये जो 50 या 100 जर्नल्स हैं इनको हर साल हमें इनकी कॉपीज जितनी भी हैं 50 हैं 500 हैं जो भी कॉपीज हैं, एक परमानेंट स्लिप बन जाती है कि भाई ये सारे जर्नल्स तो जाने ही जाने हैं बाइंडिंग में. तो आप क्या नेसेसरी चेक जो है आपको, जैसे बुक्स में आपको बताया गया है कि कौन सी बुक्स किस तरह की बाइंडिंग के लिए एलिजिबल होती हैं, जरूरत होती है इन्हें, तो इसी तरह से आपको जो पीरियोडिकल्स हैं उसमें आपको क्या देखने की जरूरत है. आपको सबसे जरूरत है ऊपर से टाइटल पेज के ऊपर जो बाइंड द वॉल्यूम टाइटल पेज इन फ्रंट ऑफ द इशू ان وچ اٹ ہیز بین ریلیٹڈ. جیسے آپ کا ایک سال کا 2010 کا ہے تو 2010 کے جین سے لے کر کے دسمبر تک جو بھی ایشوز ہوں گے اس کے اوپر آپ کا وہ ٹائٹل پیج اوپر سب سے اوپر لگنا چاہیے, جس سے آپ کو پک سے پتا چل جائے گا کہ اس میں یہ والا جرنل ہے. اٹ کورز شوڈ بی ریموڈ اف دے ڈو ناٹ کنٹین اینی سگنیفیکینٹ. جو ایکسس پیپرس ہوتے ہیں یوزلی اگر کوئی ایڈ ہے یا کچھ ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے. پریلیمنری پیجز کبھی کبھی کچھ ایسے پیجز ہوتے ہیں جن کا کوئی سگنیفیکینٹ ویلو نہیں ہوتی, خالی وہ موٹا کر دیتا ہے ڈاکیومنٹ کو, تو وی کین ریموو دیٹ. مینس ون ہیز ٹو لک ان ٹو آل دیز تھنگس. بائنڈ دا ولیوم انڈیکس آفٹر دا لاسٹ ایشو آف دا بیبلیوگرافیکل ولیوم کورڈ بائی اٹ. وین دا انڈیکس اینڈ دا ٹائٹل پیج آر سیپریبل دے شوڈ بی پلیس سیپریٹلی. بٹ دا بوتھ آر انسیپریبل اونلی پلیس اونلی دا انڈیکس ان اٹس پراپر پلیس اینڈ اگنور دا ٹائٹل پیج. انڈیکس پیج جو ہے جہاں پر آپ کو آرٹیکلس کے نام ملتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, ان کو ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کو کیا پتا چل جاتا ہے, اس سے آپ کو یہ دیکھتے ہی سب سے ٹاپ پہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے کیا کیا آرٹیکلس ہیں. اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹس ہیں یا فالتو کے کوئی پیجز ہیں ڈالے ہیں انہوں نے, یو کین ریمو دیم. سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ, پر کہیں کو جیسے اب ہمارے پاس ڈاؤن ٹور تھا تو اس کا سپلیمنٹ گوبر ٹائم سے ہے, دیٹس ریئلی گڈ. تو اگر کوئی اچھا ہے تو آپ کو رکھ لیجیے, اور اگر بہت یوزفل نہیں ہے, ڈیجٹ میں بھی سپلیمنٹ آتا ہے ایک چھوٹا سا بک, پر آپ اسے بائنڈ نہیں کرائیں گے. یہ ڈیجٹ ویسے بھی میگزین ہے, یو وونٹ بی بائنڈنگ اٹ. لائک دیٹ مسنگ ایشوز کا جیسے میں پہلے ہی بتا رہی تھی, یا تو آپ کو کسی آرگنائزیشن سے اس کی فوٹو کاپی لانی پڑے گی یا کسی پبلشر سے آپ نے بات کرنا پڑے گا, دیٹ دیر از اے مسنگ ایشو, اسے لے کر آ جائیے اور اس کو تب بائنڈ کریں گے. اس کے بعد ہم جو بات ہے ہماری اسٹاک ویریفیکیشن, سارا مٹیریل جو ہمارے پاس ہے اسے ہمیں ویریفائی بھی کرنا پڑتا ہے. کتابیں ہیں یا جرنلس ہیں انہیں کیسے کرتے ہیں, یا مینوئل کرتے ہیں ہم, یا سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے یا آٹومیٹڈ ہوتی ہے, یا شیلف لسٹ سے ریلیٹڈ بھی ہم کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم ایکسسٹنٹ رجسٹر سے یا نیومیریکل کاؤنٹنگ سے کرتے ہیں, ون ٹو آل ہم ایک رجسٹر پہ سارے نمبرس لکھتے جاتے ہیں, اس طرح سے بھی ہم اسٹاک ویریفیکیشن کرتے ہیں. ریڈنگ ہر لائبریری کی اپنی ایک الگ ریسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کا کوئی ڈاکیومنٹ ایسا ہے جو آپ کو نہیں ضرورت پڑتی اور بہت زیادہ جگہ گھیرتے ہیں, تو اس کیس میں آپ ویڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو. ہر سال ایک ویڈنگ کے کمیٹی بنا کے آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں چیزیں جو ہمارے یوز کی نہیں ہیں, اس طرح سے ہمارا اننیسیسری اسپیس جو ہے وہ یوز ہو جاتا ہے. سیکیورٹی جو ہے لائبریری مٹیریل کا سب سے امپورٹنٹ دیکھا جائے تو سیکیورٹی میں اگر آپ نے الیکٹرانک فارم میں جرنلز کو لے لیا تو آپ کا سیکیورٹی کافی حد تک ایشو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارے لائبریری میں ارینجمنٹ اینڈ مینٹیننس آف لائبریری مٹیریل میں ہم کس کس طرح سے اپنی چیزوں کو, لائبریری کی بکس کو, پیریوڈیکلس کو کس طرح سے مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کیسے کر سکتے ہیں, ان کی ویڈنگ کیسے کر سکتے ہیں, بک ویریفیکیشن جو امپورٹنٹ پارٹ ہے لائبریری کا کیسے کر سکتے ہیں. دس از آل اباؤٹ دا ہول چیپٹر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا, اور یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کی مینٹیننس سیکشن میں. تھینک یو.